आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्लास 10th के साइंस का 7th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था कि रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली वो एक्शंस होते हैं जो बहुत क्विकली होते हैं और उनके होने के लिए थिंकिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। तो ऐसे एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं जहाँ पर थिंकिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस है इनके होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? कोई स्टिमुलस, कोई आप लोगों को आसपास कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई है जिसकी वजह से आपको बिना सोचे ही एक्शन लेना है, तो ऐसी एक सिचुएशन की जरूरत होती है। उसके बाद उस सिचुएशन का जो सिग्नल है वो पहुंचना चाहिए आपके बॉडी तक, यानी कि आपको सेंस करना पड़ेगा वो सिचुएशन जो है वो आपको सेंस करनी होगी। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आपने कोई गर्म चीज छुई है तो वहां पर आप जैसे ही उसे छुएंगे तो आपको सेंस हो जाएगा कि वो चीज बहुत गर्म है, उससे हाथ जल सकता है अगर उसे छुए रहेंगे बहुत देर तक। तो इससे क्या होता है कि आपकी स्किन में जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं उन्होंने सेंस कर लिया, टेम्परेचर जो है उसका चेंज सेंस कर लिया है। उसके बाद ये जो सेंस किया गया है इसको सिग्नल के रूप में नर्व्स क्या करते हैं, सेंड करते हैं, दूसरे नर्व सेल्स के पास सेंड करते हैं। और वहां पर क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर सिग्नल वाले जो नर्व्स का नेटवर्क है वो कनेक्टेड हो उस नर्व्स के नेटवर्क से जो कि रिस्पॉन्स लेकर के जाते हैं, रिस्पॉन्स का सिग्नल लेकर के जाते हैं। एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और एक ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारा रिस्पॉन्स करने का सिग्नल लेकर के जाते हैं। तो वो पॉइंट जहां पर ये दोनों नेटवर्क्स मीट करते हैं, मिलते हैं, वो पहला पॉइंट, सबसे नजदीक वो पॉइंट जहां पर ये मीट करते हैं, मिलते हैं, वहीं से रिफ्लेक्स आर्क का फॉर्मेशन होता है। जहां पर ये मीट करते हैं वहां से एक कनेक्शन बन जाती है और एक रिफ्लेक्स आर्क यानी कि एक अलग नेटवर्क बनता है जहां पर थिंकिंग का यूज बगैर किए ही एक्शन दिया जा रहा है। रिफ्लेक्स आर्क जो होते हैं वो कॉमनली कहाँ बने हुए होते हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बने होते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसी, समझ रहे हो कि एक ट्यूब है जिसके थ्रू बॉडी के सारे जितने भी नेटवर्क्स है वो पास करते हैं और ब्रेन तक जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स के बहुत सारे नेटवर्क्स है। कुछ नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जो सेंस करने का सिग्नल लेकर के जाते हैं, कुछ नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्स का सिग्नल लेकर के जाते हैं, लेकिन सारे के सारे नेटवर्क पास करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से और स्पाइनल कॉर्ड से पास करके वो ब्रेन तक जाते हैं, क्योंकि ब्रेन को ही सबसे पहले सेंस करना होता है, सेंस का सिग्नल उसके पास पहुंचता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स सोचता है और रिस्पॉन्स का सिग्नल भी ब्रेन ही सेंड करता है। तो इसीलिए सारे के सारे नेटवर्क जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर के ब्रेन तक जाते हैं। तो वो पहला नजदीकी पॉइंट जहां पर वो नेटवर्क भी कनेक्टेड है दूसरे नेटवर्क से, जहां एक तो रिस्पॉन्स का नेटवर्क होगा और एक नेटवर्क ऐसा होगा जो सेंसरी सिग्नल्स ला रहा होगा, तो वो सबसे नजदीकी पॉइंट कहाँ पर होता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो इसीलिए जो रिफ्लेक्स आर्क होता है उसकी फॉर्मेशन भी स्पाइनल कॉर्ड में होती है। ये रिफ्लेक्स आर्क में जो हमारा बॉडी है वो फटाफट से काम करने के लिए रिफ्लेक्स आर्क का यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सेंस किया हुआ सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। अल्टीमेटली उसे ब्रेन तक पहुंचना तो है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में रिफ्लेक्स जो आर्क है वो ही हेल्प कर देता है हमारे को एक्शन लेने के लिए। फिर हमने बात की थी कि रिफ्लेक्स आर्क जो होते हैं वो छोटे एनिमल्स में, ऐसे एनिमल्स जिनमें थिंकिंग पॉसिबल नहीं है, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उनमें ब्रेन नहीं होता तो थिंकिंग का प्रोसेस उनमें यूज नहीं होता। हम हायर एनिमल्स जो होते हैं उनमें यूज होता है थिंकिंग का प्रोसेस, लेकिन उसके बावजूद भी रिफ्लेक्स आर्क्स का यूज किया जाता है क्विक रिस्पॉन्सेस के लिए। तो हायर एनिमल्स में क्विक रिस्पॉन्स के लिए, जल्दी रिस्पॉन्स के लिए रिफ्लेक्स आर्क्स का यूज किया जाता है, लेकिन जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर थिंकिंग का प्रोसेस ही नहीं होता, तो उनके अंदर यही मेन रिफ्लेक्स आर्क्स जो होते हैं वही उनके अंदर मेन रिस्पॉन्स का फंक्शन भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं पेज नंबर 117 पर, फिगर 7.2, इसमें आप लोगों को रिफ्लेक्स आर्क दिखाया गया है। कुछ नेटवर्क जो दिख रहे हैं वो आपको क्या दिखा रहे हैं, एरो जो बना हुआ है वो बता रहे हैं कि सेंसरी न्यूरॉन में सिग्नल जो है वो टच करने से लेकर के वो जा रहा है ब्रेन तक, सिग्नल लेकर के जा रहा है। तो ब्रेन तक जब सिग्नल जाएगा तो वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर के जाएगा। उसके बाद क्या किया गया, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो रिफ्लेक्स एक्शन लिया जाएगा, तो वहां पर क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनी है, सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन से जुड़े हुए हैं रिले न्यूरॉन की मदद से। रिले न्यूरॉन क्या है, रिले न्यूरॉन बेसिकली एक नेटवर्क है, एक कनेक्शन है जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स को जोड़ रहा है मोटर न्यूरॉन से। और मोटर न्यूरॉन क्या होता है? मोटर न्यूरॉन वो नर्व है जो मसल से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये डायग्राम याद करके रखना है। आप लोगों से रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसमें डायग्राम बनाएंगे तो आपको एडिशनल अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ये समझ के कि आपको समझ में आता है सारा का सारा कॉन्सेप्ट, और पॉइंट्स में आप लोगों को बस एक्सप्लेन कर देना है। तो इसलिए डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करिए और इसका मीनिंग हर एक चीज का समझ के रखिए। उसके बाद हमने थोड़ी सी बात ह्यूमन ब्रेन की भी की थी कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर ही थिंकिंग का प्रोसेस होता है, जो फोर ब्रेन यानी कि फ्रंट वाला पार्ट होता है ब्रेन का, वहां पर थिंकिंग का प्रोसेस हो रहा होता है ब्रेन में। स्पाइनल कॉर्ड्स बेसिकली क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर सारे के सारे नर्व्स के जो नेटवर्क्स है वो सप्लाई होती है ब्रेन तक। और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन हमारा बेसिकली मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का, संभाल के रखने का काम जो है वो ब्रेन का ही है। तो इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, अब हम आज की क्लास में भी ह्यूमन ब्रेन को ही कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। ब्रेन हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है और स्पाइनल कॉर्ड उसके तक यानी कि ब्रेन तक सारे नर्व्स के नेटवर्क्स को पहुंचाने का काम करता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिला करके हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसका क्या काम है, इसका काम है बॉडी के अंदर जितनी भी काम हो रहे हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन को अपने तक पहुंचाना, उसे जोड़ना, समझना, कहाँ कहाँ क्या फंक्शन कर रहे हैं उसे संभालना। बॉडी के बाहर कुछ हो रहा है तो उसके सिग्नल्स भी बॉडी रिसीव करती है, अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स की हेल्प से रिसीव करती है उन सारे के सारे सिग्नल्स को, और उस हिसाब से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही मेन फंक्शन करते हैं बॉडी के कोऑर्डिनेशन का। बॉडी की सारी जो नेसेसरी एक्शंस हो रही होती है बॉडी के अंदर भी, बॉडी के बाहर भी, बॉडी जो भी एक्शंस ले रही है वो सारा का सारा हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के कंट्रोल में ही होता है। ब्रेन सारे के सारे जो मैसेजेस, जो सिग्नल्स आते हैं उनको इकट्ठा करता है, रिसीव करता है और उन्हें इंटीग्रेट करता है, उन्हें जोड़ता है, मतलब समझता है कि कौन सा सिग्नल आया, तो इस सिग्नल को दूसरे सिग्नल से मिला करके इंटरप्रेट करता है जो भी सिग्नल्स मिलते हैं उस तक। और उसके बाद जो सिग्नल मिल गया है उसका मतलब समझ लिया है ब्रेन ने, उसके बाद उसे एक्शन भी लेना होता है, उसे रिस्पॉन्ड भी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को जो एक्शन आप खुद से सोच के लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कोई ग्लास ऑफ वाटर है उसे पिक करना है, खाना खाने के लिए प्लेट उठानी है, चल करके कहीं जाना है, ये सब सोच करके आप काम करते हैं, तो ये सोच करके सोचने का जो काम है वो ब्रेन का ही होता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तो मैं सोच समझ कर बोल रही हूँ कि हाँ मुझे क्या बोलना है, नेक्स्ट क्या बोलना है, और जब मैं सोच लूंगी कि मुझे अब नहीं बोलना है तो उस वक्त मैं चुप हो जाऊंगी। तो ये एक्शंस जो है ये वॉलंटरी एक्शंस है, मतलब हमारे कंट्रोल में है ये एक्शंस, और वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होती हैं उनको करने से पहले हम थोड़ा सा सोचते हैं कि हमें अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है। तो ये जो सोचते हैं, सोचने का काम जो है ये ब्रेन का ही होता है। अब हमने ये तो देखा कि ब्रेन के पास सारे सिग्नल्स आते हैं, वो उनको जोड़ता है और मतलब समझता है कि वो सिग्नल्स जो आए हैं उसका मीनिंग क्या है। अब उसने मीनिंग समझ लिया, अब उसको एक्शन लेना है, तो एक्शन लेने का जो सिग्नल भेजा जाता है, जो रिस्पॉन्स का सिग्नल भेजा जाता है, वो भी नर्व्स के नेटवर्क की मदद से ही भेजा जाता है। तो नर्व्स ब्रेन से होकर के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होती हैं, फैली हुई होती हैं, और वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से कनेक्टेड होती हैं, और जो एक्शन हम लेते हैं उसको लेने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि ब्रेन का एक कनेक्शन होना चाहिए हमारी बॉडी के अलग अलग मसल्स से, जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में। वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होती है जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि हमारे हाथ पैर की मसल्स जो है हमारे कंट्रोल में है, हमारे आईलिड की मसल्स जो है वो हमारे कंट्रोल में है। जितनी भी मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं उन्हें वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, और वॉलंटरी मसल्स जो है वो ब्रेन के ऑर्डर पर काम करती हैं। हमारे ब्रेन से मसल्स पर सिग्नल जाता है और अकॉर्डिंगली, जैसे मान लो वॉकिंग का है तो ब्रेन ने सिग्नल दिया कि वॉक करना है, पैरों के मसल्स को मूव करना है, तो हम वॉक करते हैं। तो एक और कम्युनिकेशन की जरूरत होगी, जैसे नेटवर्क्स बने हुए हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट हो रहे हैं ब्रेन तक, तो एक और कनेक्शन अलग बनना होगा जो ब्रेन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट कर रहा होगा। तो एक नेटवर्क से तो मैसेजेस पहुंच रहे होंगे ब्रेन तक, और दूसरे नेटवर्क से ब्रेन से मैसेजेस बॉडी तक पहुंच रहे होंगे जो रिस्पॉन्स के मैसेजेस होंगे। तो एक तरीके से कम्युनिकेशन है, एक तरीके से बातचीत होती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हमारे ब्रेन की। तो ये जो बातचीत होनी है इसके लिए नेटवर्क की जो आवश्यकता है, तो ये जो नेटवर्क बनता है इसको एक नाम दिया गया है। हम लोगों ने कहा था कि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कम्युनिकेशन करवाने वाले नर्व्स के जो नेटवर्क हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट से, उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है, नेटवर्क जो बने हैं उनका। नेटवर्क किससे बने हैं? नर्व सेल से बने हैं, न्यूरॉन से बने हैं। तो नेटवर्क जो बना हुआ है नर्व सेल से, जो कनेक्ट कर रहा है ब्रेन को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, इसी नेटवर्क को, सारे के सारे नेटवर्क को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बताया गया है कि ब्रेन से जो नर्व्स का नेटवर्क हो, ब्रेन से जो अराइज हो रहा हो, ब्रेन से जो पैदा हो रहा हो, उसे क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ब्रेन के पास जो नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती है, उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही होती हैं, अराइज हो रही होती हैं, ओरिजिनेट हो रही होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। ब्रेन हमें सोचने के लिए मौका देता है और उस सोचने के आधार पर एक्शंस लेने का मौका देता है। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे आईज का काम है देखना, तो देखने का जो सेंस करने का जो काम है वो हमारे आईज का है। ईयर्स का काम है सुनना, तो सुनने की जो सिग्नल मिलेगी, जो सेंसरी ऑर्गन का काम करेगा सुनने के लिए, वो हमारे ईयर्स करेंगे। तो ब्रेन के अंदर भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह पर आपके पास सुनने का सिग्नल भी आ रहा है, देखने का भी सिग्नल आ रहा है, बाकी सारे कामों का भी एक ही जगह सिग्नल आ रहा है। हमारा ब्रेन तो है मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, लेकिन ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेन को मेनली तीन बड़े हिस्सों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन, यानी कि जो आगे वाला ब्रेन का भाग होता है, मिड ब्रेन, जो बीच का मिडल पोर्शन होता है ब्रेन का, उसे मिड ब्रेन कहते हैं। और हाइंड ब्रेन, यानी कि बैक साइड का जो पार्ट होता है ब्रेन का, उसे हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो हमारे ब्रेन के तीन मेजर पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये तीनों के तीनों पार्ट्स जो हैं, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। इनको अलग अलग सेंसरी सिग्नल्स आते हैं, उनको वो इंटीग्रेट करते हैं, समझते हैं सिग्नल्स को, मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो भी अकॉर्डिंगली अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स सेंड करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेन का अलग अलग पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स, यानी कि ब्रेन का अलग अलग हिस्सा अलग अलग मैसेजेस को इकट्ठा करने के लिए और रिस्पॉन्स भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि फोर ब्रेन वाला जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, वो किस काम में आता है? वो थिंकिंग का पार्ट होता है। वहां पर सोचने की जो गतिविधि होती है, सोचने का जो काम होता है, वो कहाँ होती है? हमारे फोर ब्रेन में होता है, यानी कि फ्रंट वाला पार्ट जो है ब्रेन का, वहां पर होता है। बहुत से सेंसरी इम्पल्सेस यहाँ पर पहुँचते हैं, बहुत सारे सेंसरी जो इनपुट्स हैं, जो मैसेजेस हैं, वो फोर ब्रेन रिसीव करता है, प्राप्त करता है। और वो कहाँ से करता है? हमारी बॉडी में अलग अलग रिसेप्टर्स हैं, वहाँ से सेंसरी सिग्नल्स आते हैं, तो फोर ब्रेन उनको इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। और हमारे फोर ब्रेन जो है, जो फ्रंटल पार्ट है ब्रेन का, उसके भी कई अलग अलग हिस्से हैं जो कि अलग अलग काम में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फोर ब्रेन का कुछ पार्ट होता है हियरिंग का सिग्नल रिसीव करने के लिए और उसके हिसाब से एक्शन लेने के लिए, फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट स्मेल का सिग्नल लेता है, और एक और अलग पार्ट जो होता है वो साइट का, यानी देखने का, विजन का सिग्नल लेता है। तो इस तरीके से फोर ब्रेन में भी अलग अलग हिस्से जो होते हैं वो अलग अलग सेंसरी जो सिग्नल्स हैं उसको रिसीव करते हैं। अब फोर ब्रेन के अंदर तो ये सेंसरी सिग्नल्स आ गए, अब हमारे ब्रेन का कोई दूसरा हिस्सा, फोर ब्रेन के अलावा कोई दूसरा हिस्सा होगा, वो इन्वॉल्व होगा इन सेंसरी सिग्नल्स को इंटरप्रेट करने में, समझने में कि कैसा सिग्नल आया है, क्या कहना चाहता है ये सिग्नल। इस बात को समझने के लिए कोई दूसरा पार्ट हमारे ब्रेन का इन्वॉल्व होता है। अब ये जो इंटरप्रेशन का काम होता है, इंटरप्रिटेशन का जो काम होता है, समझने का, सिग्नल को समझने का, वो पहले तो मान लो कि एक ही टाइम पर आप कोई चीज देख भी रहे हैं, आप वो सुन भी पा रहे हैं, उससे जो आवाजें आ रही हैं उसे सुन भी पा रहे हैं, अगर कहीं से कोई खुशबू आ रही है तो उसे आप स्मेल कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके अलग अलग जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली तुरंत ही वो सिग्नल भेज रहे हैं। अब सिग्नल मिला है तो हर एक सेंसरी ऑर्गन ने सिग्नल्स भेजे हैं, तो वहां पर सभी सिग्नल्स को मिला करके कि इस सिग्नल को इससे जोड़ करके देखा जाए, तो लास्ट में फाइनल जो मैसेज मिलता है ब्रेन को, वो और भी चीजें मिला करके बनती हैं। जैसे कि मेमोरी, आपने कोई चीज देखी है, सपोज करो आपने सांप देखा, तो आपने सांप देखा, उसके बाद आप एनवायरमेंट देख रहे हैं, उसके बाद आवाज सुन रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है कि आपने पहले कभी पढ़ा हुआ है कि सांप जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं, दे आर वेनमस, ये लोग काट सकते हैं तो उससे नुकसान हो सकता है। तो ये सभी की सभी चीजें, जैसे कि आप उस वक्त जिस सिचुएशन में आप हैं वहां से आपको कुछ सिग्नल्स तो मिल ही रहे हैं, साथ में और भी सिग्नल्स को जोड़ा जाता है और उन सबको यूज करके एक फाइनल उस सिग्नल का इंटरप्रिटेशन होता है। तो मेमोरी का इस्तेमाल भी किया जाता है कि पहले से कोई मेमोरी हमारे ब्रेन में पड़ी हुई हो तो उसको भी यूज किया जाता है। तो लास्ट में जो इंटरप्रिटेशन होता है किसी भी सिग्नल का, वो सारी की सारी चीजें मिला करके किया जाता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस सिग्नल को इंटरप्रेट करने के लिए, उस सभी इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है और लास्ट में फाइनली मैसेज को इंटरप्रेट किया जाता है। अब ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन लेकर के लास्ट में इंटरप्रिटेशन हो जाता है सिग्नल का, तो समझ में आ जाता है कि क्या सिचुएशन है। जब सिचुएशन समझ में आ जाती है तो ब्रेन का फाइनल क्या फंक्शन होता है, रिस्पॉन्ड करने का। तो ब्रेन में एक डिसीजन बन जाता है कि हमें ये काम करना है, इस सिग्नल जो हमें आया है इसके रिस्पॉन्स में हमें ये काम करना है। तो जब रिस्पॉन्स सोच लिया गया तो अब हमारे ब्रेन का काम है रिस्पॉन्ड करने का। तो जो रिस्पॉन्ड करने का सिग्नल जाएगा वो भी इंफॉर्मेशन, वो भी एक स्टिमुलस के रूप में ही जाएगा और ये भी न्यूरॉन से ही पास करेगा, नर्व सेल से ही पास करेगा। तो क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स का सिग्नल होता है उसे नर्व सेल्स में डाल दिया जाता है और ये जो नर्व सेल्स होती हैं ये हमारे मसल्स तक उस हमारे सिग्नल को लेकर के जाती हैं, जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं जैसे कि लेग की मसल्स या हाथ की मसल्स। तो यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स का सिग्नल भेजा जाता है और अकॉर्डिंगली हमारे हाथ पैर जो है वो फंक्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पर तो आपने देखा कि फोर ब्रेन में कौन कौन से सिग्नल पहुँचते हैं, हियरिंग के या फिर स्मेल के या साइट के, इस तरीके के सिग्नल्स जो हैं वो तो हमारे फोर ब्रेन में पहुँचते हैं। अब सभी के सभी सिग्नल्स हियरिंग या फिर स्मेल या फिर साइट पर बेस्ड हो ये तो ज़रूरी नहीं है, सिग्नल्स तो किसी भी तरीके के पहुँच सकते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी को तो, ब्रेन को तो हर एक सिग्नल के लिए काम करना होता है। आपकी बॉडी के इंटरनल जो सिग्नल भेज रहा है बॉडी, वो उसके ऊपर भी काम करता है ब्रेन। सच एज आप लोगों को भूख लगती है तो भूख लगने पर ना आपने कुछ देखा ना आपने कुछ सुना, आपके पेट ने तो आपको कहा नहीं बोल करके कि भूख लगी है खाली हो गया है पेट, या फिर आपने अपने पेट के अंदर झांक करके देखा नहीं कि पेट खाली हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक समझ में आ जाता है कि आपका पेट खाली हो चुका है और आपको भूख लगी है। तो ये जो सेंसेशन है, भूख लगने की सेंसेशन या फिर पेट भर जाने की सेंसेशन, ये भी एक तरीके से सिग्नल के रूप में ही हमारे ब्रेन में पहुंचता है और वो भी ब्रेन के फोर ब्रेन वाले पार्ट में पहुंचता है, लेकिन अलग, उसके लिए अलग पार्ट होता है फोर ब्रेन का, जहां पर हमारे पेट से भूख लगी है या पेट भर चुका है इस तरीके के सिग्नल्स पहुंचते हैं। तो हमारे फोर ब्रेन में हंगर का जो सिग्नल है उसके लिए भी फोर ब्रेन में एक अलग पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम दिया गया है ह्यूमन ब्रेन का, पेज नंबर 118 पर फिगर 7.3। इसको भी आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, डायग्राम बना बना करके पहले देख करके बनाइए, फिर बिना देखे बनाइए और सारे जो लेबलिंग है उसके साथ में बनाइए। और नीचे हमेशा जब भी डायग्राम बनाते हो तो उसका नाम जरूर लिखा करो, जैसे ह्यूमन ब्रेन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको कभी एग्जाम में बोला जाता है तो डायग्राम बना करके बस नहीं छोड़ देना, नीचे लिखना है कि वो क्या है, ह्यूमन ब्रेन है या फिर किडनी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इस तरीके से आपको लेबलिंग भी पूरी आनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ब्रेन में बहुत से अलग अलग पार्ट्स हैं, इसमें आप लोगों को बहुत क्लियरली दिख रहा है कि फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट है, उसके बाद मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट है और हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है। तो यहाँ पर आप लोगों को ब्रेन के अलग अलग हिस्से दिखाए गए हैं और इससे आप लोगों को ये समझना है कि ब्रेन में अलग अलग हिस्से दिखाने का मतलब है कि ब्रेन के अलग अलग हिस्से अलग अलग फंक्शन करते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा कि ब्रेन किस तरीके से वॉलंटरी मसल्स पर एक्शन लेता है, यानी कि वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, हम उनके बारे में सोचकर उनको मूव कर सकते हैं, ऐसी मसल्स को वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, जैसे कि हाथ पैर की मसल्स या फिर हमारे टंग की मसल। तो ये मसल्स कैसी हैं, ऐसी मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, इनके बारे में सोच करके हम इन्हें एक्शन में ला सकते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे भी तो हमारी बॉडी में होते हैं जो बिल्कुल इनवॉलंटरी होते हैं, जैसे कि अगर आप सो रहे हो चाहे ना सो रहे हो, आपके पेट में डाइजेशन का प्रोसेस होता रहता है अगर फूड है तो, या फिर आपकी हार्ट हमेशा बीट करती रहती है। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आपने सोचा कि आप अपने हार्ट की बीटिंग बिल्कुल बंद करवा दे और उसने बीटिंग करना बंद कर दी? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हार्ट का जो फंक्शन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको सोच करके कि इसकी फंक्शनिंग बंद करनी है हम उसे नहीं बंद करा सकते, वो इनवॉलंटरी है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसका मतलब है कि ब्रेन को वॉलंटरी एक्शंस लेने के अलावा कुछ इनवॉलंटरी फंक्शंस जो बॉडी के अंदर हो रही हैं उसकी मेंटेनेंस का ख्याल भी रखना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप सो रहे हैं, उस वक्त आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं उस वक्त आप थिंकिंग का प्रोसेस नहीं कर पाते, बिकॉज यू आर स्लीपिंग। तो उस टाइम पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, आपको सोचने की जरूरत तो नहीं पड़ती कि मुझे सांस लेना है या मुझे सांस अब नहीं लेना है। आप सो रहे हैं उसके बावजूद भी आप सांस ले रहे हैं, तो ये प्रोसेसेस जो हैं ये इनवॉलंटरी हैं। और इनवॉलंटरी जो प्रोसेसेस हैं उनको होने देने के लिए हमें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। और आपको याद होगा कि हमने बात की हुई है कि ऐसे एक्शंस जिनको करने के लिए, जिनको जिन एक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हमें थिंकिंग की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शंस लेने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको याद होगा हमने ये नहीं कहा था कि जब रिफ्लेक्स आर्क बन रहा है तो वहां पर जो सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, वो अल्टीमेटली स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक तो पहुंचता ही है। जब आप लोगों ने इमरजेंसी सिचुएशंस में रिफ्लेक्स एक्शन लेने की बात की थी जहां पर थिंकिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं था, तो वहां पर हमने बात की थी कि अल्टीमेटली जो सिग्नल है वो ब्रेन तक तो पहुंच ही रहा है, लेकिन इमरजेंसी के लिए फटाफट अगर एक्शन लेना है, क्विक रिस्पॉन्स करना है, किसी स्टिमुलस के लिए कोई मैसेज मिला है तो उसके लिए क्विक रिस्पॉन्स जब करना है तो वहां पर रिफ्लेक्स आर्क का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ब्रेन ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी एक्शन ले रहा है हमारा बॉडी। तो यहाँ पर कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस जो बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे प्रोसेसेस हो रही हैं, एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है या फिर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये हमारी वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती है। हम लोग इनके बारे में सोच करके इनको घटा या बढ़ा या ऑन या ऑफ इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल में है, इनमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती इन प्रोसेसेस को होने के लिए। तो यहाँ पर इन एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन कह सकते हैं, और ये रिफ्लेक्स एक्शन भी हमारा ब्रेन ही लेता है और इनवॉलंटरी जो हमारी मसल्स हैं उनको कंट्रोल करता है। और आपको ये भी यहाँ पर जानना होगा कि इनवॉलंटरी जो एक्शंस हैं उनको लेने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए मेनली मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे इनवॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर या फिर सलाइवेशन, जैसे आप खाना कोई देखते हैं तो आपको खुद ही आपको उसमें मुंह में पानी आ जाता है, सलाइवा सीक्रेट होने लग जाता है, तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हमारे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के हैं, क्योंकि ये इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। वॉमिटिंग, तो इस तरीके के ये जो सारे एक्शंस हैं ये हमारा मिड ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है और हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। और उसमें से भी ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन यानी कि मुंह में जो पानी आ जाता है, थूक भर जाता है कोई खाना देख करके, या फिर ऐसे ही सलाइवा जो सिक्रेशन होने लग जाता है, माउथ में सलाइवेशन कहेंगे उसे, तो ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन या फिर वॉमिटिंग, उल्टी करना जो है, ये सारे के सारे एक्शंस किसके कंट्रोल में होते हैं? हमारे हाइंड ब्रेन का जो मेड्यूला वाला पार्ट है उसके कंट्रोल में होते हैं। अब कुछ एक्टिविटीज के बारे में बात करें, जैसे कि वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रास्ते पर चलना, या फिर अपनी साइकिल को चलाना, या फिर पेंसिल उठाना, इस तरीके के जो काम हैं ये काम ब्रेन के हाइंड ब्रेन के द्वारा होते हैं। ब्रेन के हाइंड ब्रेन में भी सेरेबलम नाम का जो पार्ट है ब्रेन का वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरीके की एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि वॉकिंग या फिर साइकिल चलाना या फिर कोई चीज उठाना। और सेरेबलम जो है वो वॉलंटरी एक्शंस जो लिए जा रहे हैं बॉडी के द्वारा वो प्रिसाइजली हो, बिल्कुल करेक्टली हो, बगैर किसी गलती के हो, इस बात को भी इंश्योर करता है। साथ में सेरेबलम हमारे बॉडी के पॉस्चर को और बैलेंस को भी मेंटेन करके रखने में मदद करता है। और ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं इनको आप आपस में रिलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि सेरेबलम हमारी बॉडी के बैलेंस को और पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन करना हमें वॉकिंग के दौरान जरूरी होता है, हम साइकिल चला रहे हैं तो भी जरूरी होता है। तो सेरेबलम जो है उसका मेन फंक्शन क्या है? बॉडी के जो पॉस्चर है या बैलेंस है उसको मेंटेन करना है। और बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन करना, बैलेंस को मेंटेन करना, ये क्या है? ये वॉलंटरी एक्शंस हैं जिनको प्रिसाइसली करने में हमारा जो सेरेबलम वाला पार्ट है वो मदद करता है। तो ये तो बात हो गई हमारे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। अब आप देख पा रहे हैं कि ब्रेन ही बेसिकली पूरी बॉडी को संभाल करके रखे हुए है। तो अगर ब्रेन ही सबसे डेलिकेट पार्ट है हमारे बॉडी का, तो कुछ ऐसा भी किया होगा बॉडी ने ताकि ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिले। तो आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेन जो है उसके टिश्यूज कैसे प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको भी पता है कि ब्रेन को एक बोनी बॉक्स में यानी कि हड्डी के एक बॉक्स में रखा जाता है जिसे हम स्कल कहते हैं। तो सबसे ज्यादा मजबूती हमारे स्कल में है, इसलिए हमारे ब्रेन को स्कल के अंदर रखा जाता है जो कि पूरा बोन्स का बना हुआ है। उसके बाद भी अगर मान लो कभी कुछ झटका लगता है आपके ब्रेन को, कहीं पर आप ऐसे भिड़ जाते हैं तो उससे आपके ब्रेन को शॉक लग सकता है। तो उससे क्या होगा, इस तरीके के शॉक से बचाने के लिए ब्रेन जो है, स्कल जो है, उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा ब्रेन बैठता है, यानी कि उसके अंदर रहता है। तो ब्रेन को समझ लो कि सबसे पहले स्कल है, सबसे ऊपरी पार्ट, उसके अंदर भी एक बलून के जैसा, भी ऐसे समझो कि आप लोगों ने, आप कभी स्विमिंग करने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को बाहर स्विमिंग पूल के बाहर ही नहला देने के लिए छोटे छोटे टब्स होते हैं जिसके अंदर हवा भरी जाती है और उसके अंदर फिर पानी भर दिया जाता है। तो इस तरीके के हवा फिल्ड जो बलून्स होते हैं जिन्हें आप अलग अलग शेप में बना सकते हैं और उसमें हवा भर के आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के स्विमिंग पूल्स भी बनते हैं छोटे बच्चों के लिए, स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल्स बनते हैं जिसमें हवा भर के टब का शेप दे दिया जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है, फिर बच्चे उसमें स्विमिंग कर सकते हैं छोटे बच्चे। तो इस तरीके का ही कुछ यहाँ पर होता है कि डबल वॉल्ड, जैसे कि अगर वो डबल वॉल्ड नहीं होता, वो बलून जो है जिसमें पानी भर के स्विमिंग पूल बनाया गया, अगर वो डबल वॉल्ड नहीं होगा तो उसमें हवा कैसे भरेगी। तो इस तरीके से होता है कि ऐसा बलून समझ लो कि जिसके अंदर पानी भरा गया है और उसको स्कल की जैसी शेप है वैसी शेप में वो है, लेकिन वो डबल वॉल्ड है और उसके बीच में उस, जैसे मान लो कि दो बलून्स हैं, अंदर एक बलून बाहर एक बलून, और दोनों बलून्स के बीच में पानी भरा गया है और जो अंदर वाला बलून है उसके अंदर ब्रेन को रखा गया है। तो फुल्ली प्रोटेक्टेड रखा जाता है, हमारी बॉडी जो है वो पूरा इंश्योर करती है कि ब्रेन को किसी तरीके का ना कोई शॉक लगे ना इस पर कोई चोट पहुंच पाए। तो ये तो बात हो गई कि ब्रेन की प्रोटेक्शन हो रही है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि ब्रेन के साथ में स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत ही जरूरी पार्ट होता है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन भी बहुत आवश्यक है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप लोग अपने गर्दन पे, पीछे साइड जो गर्दन है उस पे हाथ लगा करके देखेंगे, अपना सिर नीचे झुका करके और फिर अपनी गर्दन पर हाथ लगा करके देखिए तो आपको टाइट लगेगा, आपकी गर्दन वाला बैक का जो हिस्सा है वो आपको टाइट लगेगा। तो आप वहां पर क्या होता है, वो टाइट इसलिए है क्योंकि वहां पर भी बोन्स हैं, और कौन सी बोन्स है, वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, और वर्टिब्रल कॉलम को हम बैक बोन भी कहते हैं। तो हमारे बैक साइड में जो बोन है, बोन का एक कनेक्टेड कॉलम सा बना हुआ है और उसके बिल्कुल सेंटर में होल होता है, छेद होता है जो एक पाइप का फॉर्मेशन करता है, एक हॉलो पाइप का फॉर्मेशन करता है, और उस हॉलो पाइप में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रहती है। तो इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैक बोन जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, और स्कल क्या करता है, स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो बात हमने कर ली ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, और इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है बॉडी के अंदर में, ये सारी बात हमने कर ली। साथ में हमने ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस देख लिए, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के द्वारा क्या क्या फंक्शन किया जाता है। बाकी और भी बहुत से पार्ट्स हैं जिनके फंक्शंस के बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। हमारे जो नर्व्स के नेटवर्क होते हैं बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, जो भी स्टिमुलस है उसको वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन का काम है उस सिग्नल को इंटरप्रेट करना, मैसेज को इंटरप्रेट करना, उसके बाद रिस्पॉन्स को सोचना, समझना, और उसके बाद में एक अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स सोचने के बाद में उसका सिग्नल भी हमारे ब्रेन जो है वो सेंड करती है, और वो भी कहाँ से पहुँचता है, कौन से, किस तरीके से पहुँचता है, वो भी हमारे न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स के नेटवर्क के वजह से ही पहुँच पाता है। उसके बाद जब नेटवर्क्स ने मैसेज पहुंचा दिया, तो जब नेटवर्क्स ने मैसेज पहुंचा दिया उसके बाद हमारी मसल्स कैसे फंक्शन करती है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कि जैसे ही रिस्पॉन्स का मैसेज पहुंच गया है हमारे मसल्स के पास में, जो वॉलंटरी मसल्स है, तो वो फंक्शन कैसे करती हैं। तो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप लोग चाहे तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं पहले से। बाकी आपने जो क्या करना है कि आज जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत आए तो अपने टीचर से जरूर पूछिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।